प्रेज़ गॉड, मसीह यीशु में सब बहन में इस्लाम खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में सब खुश हैं, आप खुश रहेंगे तो सब खुश रखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप सब इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और इस चैनल के वसीला से कलाम सुनते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। ये काविश जो की है ये खुदा की तरफ से है, जो खुदा का प्रोग्राम था और खुदा ने हमारे टीम के दिल में डाला कि हम इस चैनल को बनाएं ताकि खुदा का काम किया जाए, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा आप सबको बरकत दे। और जिस तरह सब जानते हैं कि हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं या सुन रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लिंक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अजीजों को इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मैसेज शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम ज्यादा लोगों तक जा सके और ज्यादा खुदावंद का कलाम फैल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ये अखीर जमाना है, अखीर दिन है और कलाम में लिखा हुआ कि अखीर जमाने में बुरे दिन आएंगे। हम सब जानते हैं हम जिन दिनों से गुजर रहे हैं ये बुरे दिन हैं और ये तो खुदा का शुक्र है कि खुदा का फजल है कि खुदा ने अब तक हमें संभाला हुआ है। और आप सब जानते हैं खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमारी रहनुमाई कर रहा है और हमें बताता है कि हमें किस तरह चलना है। और आप मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आप सब खुदा का कलाम सुन रहे हैं और खुदा की रहनुमाई पा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जो आवाज खुदा की आती है उस पर अमल कीजिए ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह खुदा का काम मजीद खुदा का नाम जलाल पाता जाए। और खुदा का शुक्र है हमारे दरमियान भाई यूनुस है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को सुने, वहां आए और मैं उनसे कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा वो दुआ करें खुदा के कलाम के लिए, खुदा के एक बंदा खादम के लिए और सारी जमात सारे लोगों के लिए जो इस मैसेज को सुनने वाले हैं।
आइए दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं बाप खुदा, क्योंकि तू बड़ा है, तेरी शफकत अबदी और तेरा प्यार निराला है मेरे खुदा। तेरी इस प्यार तेरी मोहब्बत के लिए जो तूने अपने बेटा के वसीला से हमसे की, तेरा शुक्र करते हैं बाप खुदा। ऐ बाप खुदा इस अखीर जमाना में खुदावन तू हमें संभाले हुए है, तेरा शुक्र करते हैं बाप खुदा। ऐ खुदा इन तमाम बहनों भाइयों के लिए पाप खुदा, तमाम अजीजों के लिए जो इस वक्त पाप खुदा तेरे कलाम को, तेरे कलाम की आवाज को सुनने को है पाप खुदा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ पास खुदा। अब तेरे खादम बंदा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बड़ी हिकमत दनाई और फहम से बरकत खुदा। आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए पा खुदा बड़ी बरकत का बायस हो पा खुदा। हम अपने आप को टटोले जांचे पा खुदा और जो कमी कमजोरियां हैं उनको दूर करते पा खुदा, हम तेरे लायक बन जाए पा खुदा, हम बाफल हो जाए पा खुदा और तेरे हजूर बहुत सा फल लाने वाले बन जाए मेरे खुदा। अपने खादम बंदा को छूना और बड़ी बरकत बख्शना, हमें सुनने वाला पा खुदा दिल अता फरमा खुदा, हम ना सिर्फ महज इस कलाम को सुने बल्कि इस पर पा खुदा अमल भी करने वाले हों, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन।
प्रेज गॉड। भाई यूनुस खुदा आपको बरकत दे। आज का बड़ा जबरदस्त खुदा का मैसेज है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस मैसेज को सुने तो चूंकि ये अखीर दिनों के सिस्टम से खुदा ने कलाम दिया है, अखीर अयाम के हिसाब से खुदा ने कलाम दिया है, बहुत जबरदस्त मैसेज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे जब आप इस मैसेज को सुने तो काइंडली शुरू से लेके आखिर तक उसको जरूर सुनिएगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं बगैर देर किए दावत दूंगा बुजुर्गों को कि वो आए और वो खुदा का कलाम जो रूहानी रोटी आज हमारे लिए रखी हुई है खुदा ने वो हम तक पहुंचाएं।
खुदावंद यीशु के पाक नाम में तमाम सुनने वालों देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ और खुदा की हजूरी में बैठने के लिए और खुदा के कलाम की आवाज सुनने के लिए आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज हमारा बड़ा संक्षिप्त से एक मजमून है जिसका बड़ा गहरा तल्लक अखीर जमाना के साथ है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं मसीही दुनिया के अंदर ये मौजजात की बातें बहुत हो रही हैं और मौजजात हो भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक इन मौजजात की कुछ बातें करें और उसके बारे में गहरे तौर पर जानने की कोशिश करें। जब हम मौजजात की बात करते हैं तो इस बात को याद रखिए कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में, मेरा मतलब है तकरीबन 33.5 साल की जो जिंदगी थी और खासतौर पर 3.5 साल खिदमत की मैं बात कर रहा हूं, 3.5 साल जो उन्होंने तकरीबन खिदमत की है वो सारी की सारी सारी म्याद जो 3.5 साल है वो मौजसा से भरी हुई है। काना गलील के मौजसा से लेकर मेरे खुदावन के आसमान पर जाने तक मेरे खुदावन ने इतने मौजसे किए हैं कि यूहन्ना के बारे में लिखने लगा तो कहता है कि मैं तो चाहता ऊपर से पढ़ लीजिए, यूहन्ना की जील का 20वां बाब है उसकी 30वीं आयत पढ़ी जी।
और यीशु ने और बहुत से मौजजे शागिर्दों के सामने दिखाए।
हाँ, यूहन्ना कहता है उसने तो बहुत से मौजजे दिखाए शागिर्दों के सामने
जो इस किताब में लिखे नहीं
लिखे नहीं गए। हाँ जी,
लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ।
ये लिखे इसलिए गए हैं कि ताकि तुम ईमान लाओ।
यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है।
हाँ जी, बल्कि एक जगह लिखा हुआ है कि अगर वो सारे लिखे जाते तो शायद इतनी किताब होती कि रखने की जगह ना होती, इतने यसूसी ने मौजे किए हैं। अब जो मौजे मेरे खुदावन यसूसी की जिंदगी में उसने किए, इनका मकसद क्या था? बड़ी सादा सी बात लिखी हुई है, ताकि लोग ईमान लाए। जो मौजे किए हैं और लिखे हैं इसके दो मकसद हैं, लोग पढ़े जाने और ईमान लाए। किस पर? खुदावंद यसूसी पर। और क्या माने? खुदावंद यसु ही खुदा का बेटा मसीह है। पहले नंबर पर तो ये, नंबर दो
और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ।
हाँ, सिर्फ यसु जी के नाम पर ही ईमान नहीं लाना बल्कि उसके नाम पर ईमान लाकर जिंदगी पाए जिसको हमेशा की जिंदगी कहते हैं। तो इसका मतलब ये सादा सा ये हुआ कि मेरे खुदावन ने जो मौजे किए हैं उसका मकसद ये था कि लोग उसके नाम पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। ये था मकसद मौजे करने का। बेसिक जो प्रोग्राम था मेरे खुदावन का, ये उसके बाबत लिखा हुआ है। अब मौजजात की जब हम बात करते हैं, मौजजात क्या है? बेसिकली मौजजात एक फॉर्मल फितरत काम है। मौजजात की बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, वो फॉर्मल फितरत काम जो बनी नौ इंसान की भलाई और बेहतरी के लिए हो, मांस दिखाने के लिए नहीं हो, भलाई और बेहतरी के लिए हो और उसके सबब से खुदा की हजूरी भी नजर आए, यानी पता चले कि यहां पर खुदा मौजूद है, तो इसको कहते हैं मौजजा। लेकिन याद रखिए, जहां पर मौजे होते हैं वहां पर शोबे भी होते हैं। मैं मौजे और शोबे की बात करने लगा हूं। मौजे के पीछे खुदा की कुदरत होती है, बनी इंसान की भलाई और तरक्की होती है और खुदा की हजूरी की इस बात की दलील होती है कि खुदा यहां मौजूद है। लेकिन शोबा जो होता है इसके पीछे होती है, इसके पीछे भी कुदरती है, लेकिन वो अबलीसी कुदरत होती है जो अजीब होती है, हैरान कुन खाम होता है, लेकिन उससे लोग ना तो ईमान लाते हैं ना खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं बल्कि सिर्फ महजूज होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन बातों को थोड़ा सा आखिरी दौर के अंदर हम सीखें। मौजजात के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, कुदरत होती है इसके पीछे, या तो वो खुदा की होती है या वो अबलीस की होती है, क्योंकि इस बात को भूलना नहीं, अबलीस भी मौजे करता है, अबलीस की कुदरत भी मौजे करती है। हमें ये कैसे पता चलता है? अगर हम खरूज की किताब में जाएं, तो मूसा से खुदा ने जब कोहे हूरब पर कलाम किया, हूरब के पहाड़ पर जब खुदा ने उससे कलाम किया तो खुदा ने कहा कि तू जा फराओं के पास जा, पहले तो इसराइल के बुजुर्गों के पास जा। तो उसने बड़ी सादगी से कहा कि खुदावंद मेरा यकीन कौन करेगा कि तूने मुझे भेजा है। मैं चाहता उसको पढ़ने, खुरूज की किताब का 4वां बाब निकालिए मेरे साथ। खुरूज की किताब का 4वां बाब है, उसकी पहली आयत पढ़िए जी।
तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे।
भाई मेरे पास कोई चीज तो हो कि मैं यकीन करेंगे, वाकई खुदा ने तेरे साथ गुफ्तगू की है। तो अब जुबानी जुबानी बात करते हैं, तो फिर खुदावन ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक लाठी थी, खुदावन ने कहा इसको फेंक दे, वो सांप बन गई। फिर उसके बाद खुदावन ने एक और मौजजा भी दिया, और कहा कि अगर ये दोनों मौजज़ों का भी पहले मौजज़े का यकीन ना करो तो फिर तो दूसरा मौजज़ा दिखा देना। तो मतलब कहने का ये है कि मौजज़े का ये भी मकसद होता है कि ये समझ आ जाए कि इस बंदे के साथ खुदा की कुदरत है।
आमीन।
और वाकई ऐसा हुआ, जब उससे जाकर मौजज़े दिखाए। अब शैतान ने जरा पांचवें बाप की सॉरी चौथे बाप की 27वीं आयत पे आ जाइए जरा।
और खुदावंद ने हारून से कहा के बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है।
तो ये मौजज़े हैं और ये दोनों मौजज़े उसने जाके दिखाए भी और वो उस पर ईमान ले भी आए। अब सब चलिए जरा छठे बाप की 9 आयत में चलिए जरा।
और मूसा ने बनी इसराइल
सातवें बाप की सॉरी सातवें बाप की
सातवें बाप की नवीं आए।
हाँ।
और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिराउन तुमको कहे कि अपना मौजजा दिखाओ।
हाँ, जब वो कहे अपना मौजजा दिखाओ
तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिराउन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिराउन के पास गए और उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक किया और हारून ने अपनी लाठी फिराउन और उसके खातों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई।
बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। अब ये मौजज़ा फिराउन ने कहा दिखाओ मौजज़ा मुझे, आपके पास क्या सबूत है? बुजुर्गों को दिखाया है, बुजुर्ग साथ जान पड़े हैं, फिराउन को दिखाया है, जूही फिराउन को मौजज़ा दिखाया। आगे पढ़िए क्या लिखा है।
तब फिराउन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया,
उसने देखा कि यकीन करो कि वाकई इसके साथ खुदा है। आगे,
और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही
जादू से ऐसा किया। अब गौर से सुन लीजिए, जादू से भी वही कुछ हो सकता है, सेम मौजज़ा जादू से भी हुआ है। जादूगरों ने किया हरकत जादू से किया है, अपनी सी कुदरत से किया है। जादू क्या है? अपनी सी कुदरत का नाम जादू है। आगे पढ़िए।
क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई और फिराउन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी।
अब ये बात जब पढ़ते हैं तो समझ आती है कि फिराउन को यकीन दिलाने के लिए, इसराइल के बुजुर्गों को यकीन दिलाने के लिए खुदा ने मूसा को मौजजा दिया। लेकिन साथ ये भी याद रखे अबलीस भी मौजजे करता है। ये अलग बात है, अल्टीमेटली खुदा की कुदरत अबलीस की कुदरत पर गालिब आती है। ये तो 100% करेक्ट है। अबलीस कादर है लेकिन खुदाए वाद एलोहीम यहोवा एलोहीम खुदाए कादर बुत नहीं। ये तो बात क्लियर है। अब मौजज़ा इसलिए भी होता है, इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई खुदा की कुदरत इसके साथ है। अब यही भी चीज अगर हम ईमान की किताब के 8वें बाब में जाएं तो वहां पर फिलिप्पुस जब गया है सामरिया में, तो मैं चाहता हूं वो भी पढ़ ले 8वां बाब है ईमान की किताब का। ईमान की किताब 8वें बाब की पहली आयत पढ़िए सर।
8वें बाब की पहली आयत, और साउल उसके कत्ल पर राजी था यहीं से।
जी जी।
और उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बर्पा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परागंदा हो गए।
और उसके बाद चौथी आयत पढ़िए,
और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए गए और उस पर बड़ा मातम किया और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो खराब की खुशखबरी देते मिले और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मनादी करने लगा।
फिलिप्पुस मसीह की मनादी करने लगा सामरिया में। आगे पढ़िए क्या हुआ।
और जो मौजज़े फिलिप्पुस दिखाता था,
और से सुनिए, जो मौजज़े फिलिप्पुस दिखाता था
लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया।
जी लगाने का मतलब है उसका यकीन किया कि वाकई खुदा की कुदरत इसके साथ है। तो मैं बात कर रहा हूं कि खुदा मौजज़ात इसलिए भी देता है ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि खुदावंद की कुदरत इस बंदा के साथ काम कर रही है। अब यह तो हमने समझ आ गई कि खुदावंद की कुदरत के सबब से मौजज़े होते हैं, कोई भी शख्स हो सकता है, लेकिन साथ साथ इन बातों के लिए आंखें बंद नहीं करना, मौजज़े अबलीस की कुदरत से भी होते हैं। अगली बात, जब मौजज़ात की बात की जाती है तो कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो इस वक्त मौजज़ात का यकीन नहीं करती। اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بس خدا مند یسوع مسیح تک محدود تھا، اس کی خدمت تک محدود تھا اور اب معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان بات کو بڑے غور سے سیکھیں اور سنیں. معجزات کا سلسلہ مسیح کے بعد ختم نہیں ہو گیا بلکہ جاری رہا اور جاری رہے گا.
آمین آمین.
یہ بھی یاد رکھیے، یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، آسمان پر جانے سے پہلے جب جانے لگے میرے خدا مند یسوع مسیح، تو اس وقت میرے خدا نے ایک بات کہی تھی، تو میں چاہتا ہوں اس کو ضرور پڑھ لیں. مرقس کی انجیل نکالیے ذرا، 16 باب ہے. ہاں جی،
14 آیت سے
پڑھیے، 15 آیت سے پڑھ دیجیے.
اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسما لے وہ نجات پائے گا،
آگے،
اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا،
آگے،
اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے.
یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا معجزوں کا، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، جاری رہیں گے. آج کا کوئی خادم اٹھ کر کہتا نہیں وہ تو ختم ہو گیا، بھلے بھائی مرقس کی انجیل کی آخری باب کو پڑھو، ایمانداروں کے درمیان، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اور معجزے کون کون سے ہیں؟ نمبر ون
پڑھو، ایمان لائے اور بپتسما لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے،
نمبر ون
وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے.
یہ بھی معجزوں میں شامل ہوتا ہے، یہ موضوع کے اندر شامل ہے، بدرو یسوع مسیح کے نام سے نکلے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لنگڑا چلنا شروع کر دے تو یہ معجزہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب آنکھیں نہیں تھیں آنکھیں آ گئی تو یہ معجزہ، ارے بھائی بدرو نکلی ہے یہ بھی معجزہ ہے، یہ یسوع مسیح کے نام کی قدرت کا معجزہ ہے. آگے پڑھیے،
نئی نئی زبانیں بولیں گے،
یہ بیگانہ زبانیں یا غیر زبانیں میں دعا کرنا، یہ جو نئی زبانیں ہیں غیر زبانیں، جس کو صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ روح القدس کے نزول کا ایک نشان ہے. ارے یہ معجزہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر خدا نے اپنی بادشاہی کی سٹیمپ لگا دی ہے. یہ معجزہ نہیں، جھوٹی بات ہے کوئی، یہ بھی معجزوں میں شامل ہے، یہ بیگانہ زبانیں بولنے والے جائیں یہ معجزہ ہے ان کی زندگی میں. آگے پڑھیے،
سانپوں کو اٹھا لیں گے.
اب سانپوں کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو وہ جو سانپ دکھانے والے یا وہ جو کاروباری لوگ اٹھائے پھرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب وہی ہے بڑا سادگی کے ساتھ ہم گہرے میں نہیں جائیں گے. ایک دفعہ پالوس اپنے سفر میں، آپ کو پتا ہے کہ جب جہاز تباہ ہو گیا تو وہاں پر لکڑیاں جمع کر رہے تھے آگ سلگانے کے لیے، اور اس نے بھی لکڑیاں جمع کرنی شروع کی اور ایک سانپ اس کے ہاتھ کو لپٹ گیا اور اس کو آگ میں جھپ جھپٹ دیا، اور لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو موت اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی. ارے نہیں بھائی، اس نے غلطی سے سانپ کو اٹھایا ہے، کوئی سانپ دکھانے کے لیے نہیں اٹھایا، غلطی سے اگر سانپ اٹھا لیا ہے تو سانپ اس کو کچھ نہیں کہے گا. صحیح یہ مطلب ہے، یعنی ایک معجزہ ہے کہ خدا کا بندہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ رہتا ہے، یہ معجزہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایمانداروں کی زندگی میں شاید یہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی خدا بند پہنچا کر رہا ہے. آگے پڑھ گئے،
اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے،
یہ بھی اسی سفر میں آتا ہے. آگے پڑھئے،
وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے.
بھائی یہ بھی معجزہ ہے، معجزاتی طور پر بندہ ہاتھ رکھے اور بندہ ٹھیک ہو جائے، یہ معجزوں میں شامل ہے.
آمین آمین.
میرے خیال میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آپ اگر ایمان کی کتاب میں جائیں، ایمان کی کتاب میں آپ کو بھری پڑی نظر آتی ہے، معجزات سے بھری نظر آ رہی ہے. کیا میرے خدا بند نے معجزے کرنا بند کر دیے؟ بلکہ کلام کہتا ہے، اگر آگے پڑھے اس کے ساتھ آگے پڑھنے ذرا مرکز کی کتاب پڑھ رہی ہے، خدا بند اپنے کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا رہا ہے. اگلی آیت پڑھ دیجیے، 19 آیت،
غرض خدا یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا
اور
خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا.
اور پھر کیا ہوا؟
پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی
اور وہ تو منادی کرنا شروع ہو گئے،
اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا،
خداوند روح میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا،
اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے
جو کلام ان کو دیا ہوا تھا، جو منادی کرنے کا حکم ان کو دیا تھا، جو تعلیم رسولوں کو دی تھی، خداوند اس تعلیم پر سٹیمپ لگاتا رہا. کیسے؟
ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے
ثابت کرتا رہا. جو رسولوں کے درمیان معجزے ہو رہے تھے وہ اس بات کو ثابت کر رہے تھے خداوند یسوع ان کے ساتھ ہے. معجزوں کے سبب سے خداوند یسوع کی حضوری نظر آ رہی تھی رسولوں کے درمیان. فرشتے آ رہے تھے, قید خانہ کے دروازے کھول رہے تھے.
yes.
کلام میں لکھا ہوا ہے پطرس رسول بھی کتنے بیماروں کو شفا دی, پطرس رسول کے ہاتھ سے کتنے لوگوں نے شفا پائی, مردے زندہ ہوئے, قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی. کیسے اب پھر بھی کے علاقہ میں, ارے بھائی یہ سارے معجزے تو ہیں. ایمان کی کتاب معجزات سے بھری ہوئی ہے. اور یہ کہنا کہ موسم کا دور ختم ہو گیا ہے, کس نے کہا ہے؟ آگے اگر گرنتس کی کلیسیا میں پلوس کیا ہے تو کیا گرنتس کی کلیسیا میں معجزات کی بات پلوس نہیں کر رہا؟ میں چاہتا ہوں اگر پہلا گرنتی بارہ باب پڑھیے گا تو وہاں پر آپ کو پلوس سکھاتا ہوا ملتا ہے کہ کلیسیا کے اندر یہ خاص خاص نعمتیں اور برکتیں اور تسیلے اور خدمتیں ہیں. سر بارہ باب نکالیے
پہلی آیت سے.
جی
اے بھائیو,
چوتھی آیت سے پڑھ دیتے چارٹ کرتے ہیں.
نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے.
پڑھتے جائیے.
اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے.
پڑھتے جائیے.
سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے.
یہ تھوڑا سی بات سوچنے والی ہے, سمجھنے والی ہے. روح کے ظہور جو ہے بھلے وہ تاثیروں سے نظر آئے یا نعمتوں سے نظر آئے یا خدمتوں سے نظر آئے. ساتھ میں دوبارہ پڑھیے سر.
لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے.
اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور آگے بہت سی نعمتیں خدمتیں اور تاثیروں کی بات, اور یہ سارے فائدے کے لیے ہیں. آگے پڑھیے کیا ہے.
کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے.
ہاں جی.
دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام.
جی.
کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا.
اس میں لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت. مجھے بتائیں یسوع سی معجزے کرتا رہا. رسولوں کی زندگی میں بھی یسوع سی ہی معجزے کرتا رہا, بولنا نہیں ہے. آگے روح قدس کے وسیلے پھر خداوند ہی معجزے کر رہا ہے. معجزے خداوند کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ الگ بات ہے خداوند کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے, کسی کو معجزوں کی قدرت. یہ خدمت ہے, یہ تسہیل ہے. یہ تسہیل اور خدمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں, نعمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, جہاں جہاں بھی معجزے ہو رہے ہیں, جس جس بندے کے وسیلہ سے بھی معجزے ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیے اس کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے. کلیسیا کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ کلیسیا کے فائدے کے لیے ہے. کیونکہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ایک بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں, یہ کسی خادم کی واہ واہ کے لیے نہیں ہوتا کہ اس خادم نے معجزہ کا, اس خادم کلام سنا رہا تھا, دعا کی معجزہ ہو گیا اور آپ سمجھے کہ جی بس یہ خادم ایک نمبر ہے. کیونکہ اس خادم کے وسیلے معجزے ہوتے ہیں, لہذا یہ خادم جو ہے اس کو شاید خاص خدا نے یہ نعمت دی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, نعمت دی جا سکتی ہے, خدا دیتا ہے, خدا مند اس کے اندر سے یہ کام کرتا ہے. ہم اس سے کون انکار کرتا ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت. لیکن میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں, معجزہ دیں گے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ خادم 100% ٹھیک ہے. اب یہاں پر پریشان بھی ہو جائے گی میں کیا بول رہا ہوں. غور سے میری بات کو سنیے, کسی خادم کی نعمت اس کے ٹھیک ہونے کا ثبوت نہیں ہوتی. ایک معجزہ اس کا مطلب خادم ٹھیک ہے. میں آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا اور بھی باتیں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے پولس رسول ایک بڑی خطرناک اور بڑی سینسیٹیو سی بات سکھا رہا تھا کرنتھس کی کلیسیا کو, جس کے اندر آلریڈی کسی کو معجزوں کی قدرت ملی تھی اور مل چکی تھی اور مل رہی تھی. انہیں کو ہی پہلے خط میں اس نے یہ لکھا, دوسرے خط میں اس نے پھر ایک اور اس کی مزید اس کی ایمپلیفیکیشن دی, اس بات کو مزید بڑھایا. اگر آپ دوسرے گرنتھیوں کے 11 بابے میں سب جائیں, پہلے گرنتھیوں 12 بابے میں اس نے خداوند نے اس بندہ نے سکھایا کہ کسی کو موضوع کی قدرت ملتی ہے, लेकिन अगले खत में उसने ग्यारहवें बाब में क्या कहा?
पहली आयत से
जी,
काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते।
हाँ जी,
हाँ तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कमवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं।
लेकिन
मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया,
जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया और उसको वो फल खिला दिया जो खाने का हुक्म खुदा ने कहा था कि नहीं नहीं खाना है। जी,
उसी तरह तुम्हारे ख्याल भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाए,
यानी कोई ऐसा ना हो जो तुमको मसीह की तालीम से हटा दे जैसे हवा को सांप ने तालीम से हटा दिया। आगे,
जो मसीह के साथ होनी चाहिए।
आगे मसीह उसकी एप्लीफिकेशन सुनिए,
क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है,
करता तो यीशु की मनादी है लेकिन वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है। कौन से दूसरे यीशु की?
जिसकी मनादी हमने,
जिस यीशु की मनादी हमने नहीं की है,
या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना
बजाय। और से सुनिए, ग्रंथस की कलीसिया, मुझे ये डर है कि कहीं उसी तरह ही तुमको कोई लेफ्ट राइट ना कर दे जिस तरह सांप ने हवा को लेफ्ट राइट कर दिया, कलाम से हटा दिया। उसकी वजह है कि जो आता है ना, अगर वो उसी यीशु की मनादी नहीं करता जिस यीशु की मनादी हमने की है, तो बड़ी खतरनाक बात है। और आगे सारी बातें नहीं पढ़ते, अब डायरेक्ट अगर मेरे साथ चले जाइए, तेरियत पे चले जाइए, तो बड़ा अच्छा होगा।
क्योंकि ऐसे लोग
हैं जो उस यीशु की मनादी नहीं कर रहे जिस यीशु की मनादी रसूल करते थे। सुन लीजिए, खासतौर पर प्रीचर सुन लीजिए, दुनिया पब्लिक भी सुन ले, कलाम सुनाने वाले को सुना करो कि वो किस यीशु की मनादी कर रहा है। वो यीशु को वैसे पेश कर रहा है जैसे रसूलों ने किया, या किसी और तरीके से पेश कर रहा है? पढ़िए,
क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल,
और जो वैसी मनादी नहीं करते जैसे रसूलों ने किया ना, तो वो कलाम कहता है वो झूठे रसूल है
और दगाबाजी से काम करने वाले हैं।
काम ही रहे हैं लेकिन उसके पीछे दगा है
और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं।
अंदाजा कर रहे, शक्ल उन्होंने रसूलों के हम शक्ल बने हुए हैं, तरीकाकार लग रहा है बिल्कुल रसूलों जैसा है, लेकिन जब मनादी की बात करें तो मनादी रसूलों जैसी नहीं है। मैं यहां पर खबरदार करने लगा हूं तमाम खादिमों को, अगर आपकी मनादी रसूलों की मनादी नहीं, ओ भाई आप क्या कर रहे हैं? और सुनने वाले भी सुनिए, खादिमों को पहचाना कीजिए, वो उस यीशु की मनादी कर रहे हैं जिसकी रसूलों ने की है, वो यीशु को उसी तरह पेश कर रहे हैं जिस तरह रसूलों ने यीशु को पेश किया, फिर बंदे ठीक है। वरना याद रखो, वो रसूलों के हम शक्ल है और वो दगाबाज खादिम है। और आगे मेरे मैं चाहता हूं, तो सर चौथी पढ़िए जी,
और कुछ अजब नहीं,
अजब नहीं आगे,
क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल
बना लेता है। इब्लीस ये काम करता है। कभी इब्लीस ने सांप में होकर काम किया था, और इस आखिरी दौर के अंदर इब्लीस झूठे रसूलों के और झूठ खादमों के वसीले काम कर रहा है। मुरादी पे बड़े गौर किया कीजिए, बहुत गौर कीजिए मुनादी के ऊपर। मौसा को ना सिर्फ देखिए, मुनादी को भी देखिए। ये बात क्रंथस की कलीसिया को पालसुस, सिर्फ मौसे नहीं देखने हैं, मुनादी पे भी बड़ा नुकता रखना है आपने। आपकी निगाह मुनादी पर भी होनी चाहिए। यीशु जी ने इसकी बाबत बड़ी खूबसूरत तालीम दी, मत्ती की झील के 24वें बाब से चलिए जरा, मत्ती की झील का 24वां बाब। जब मेरे खुदावन अपने आने के निशानात के बारे में बता रहा था, मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 11वीं आयत पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे।
अब सुन लीजिए,
और बेदीनी के
बहुत से झूठे नबी
उठ खड़े होंगे
और बतेरों को क्या करेंगे?
गुमराह करेंगे।
ये इस दौर की बात हो रही है जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं। इस दौर के अंदर झूठे नबी जो है वो गुमराही का सबब बन रहे हैं। और आगे पढ़िए,
और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी,
बल्कि मैं चाहता हूं कि 11वीं अध्याय 24वीं अध्याय
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीतों को भी गुमराह कर ले।
झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और दिखाएंगे कुछ, क्या दिखाएंगे सर?
बड़े निशान और अजीब काम,
दो चीजें दिखाएंगे, बड़े निशान भी दिखाएंगे और मोशे भी दिखाएंगे। और मकसद क्या होगा? खुदा का जलाल नहीं, मकसद लोगों को गुमराह करना है। हम बड़े सेंसिटिव दौर में से गुजर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तो बाद में कहा है ना, उसने पहले एक दफा शागिर्दों को कहा था झूठे नबी से खबरदार रहो। अगर हम मत्ती की इंजील के 7वें बाब में चाहे उसकी 15 आयत पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह इस तरह की बातें की हैं।
7 बाब उसकी 15वीं आयत, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
पढ़ते जाइए,
उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे।
और से सुनना इस बात को, झूठे नबियों की पहचान उनके मोर्चे नहीं, इवन के उसकी मनादी भी नहीं, बल्कि उनके फल है। फल आगे,
क्या झाड़ियों से ऊंट अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है।
जी,
अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे।
हमारा इस रिपीटेड यीशु मसीह ने बात कही है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आगे,
जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा।
आगे,
मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की?
जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका डायरेक्ट अलग वो उस तख्त के साथ है जहां मेरा मसीह बैठा होगा, और मुझे लगता है कि ये बाई तरफ वालों की आवाज है। ये कुछ लोग हैं जो बाई तरफ खड़े हैं और वो कह रहे हैं, जो बकरियों की मानद जिनको कहा गया है वो कह रहे हैं मेरे खुदावंद को, क्या कह रहे हैं पढ़िए,
क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की?
या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की
और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला?
तो तेरे नाम से बदरूहों को भी निकाला है।
और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए?
तेरे नाम से बहुत से मौजे
नहीं दिखाए
हमने, किन्होंने?
हमने।
एक बात को सुनिए, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना, जहां मौजे होते हैं वहां तीन तरह के लोग होते हैं। कितनी तरह के?
तीन तरह
के लोग। नंबर वन, कुछ तो आते हैं मौजदा देखने के लिए, और कुछ होते हैं वो जिनकी जिंदगी में मौजदा होता है, और तीसरा बंदा वो होता है जिसके वसीला मौजदा होता है, क्योंकि तो मेरा खुदावंद तो नजर नहीं आ रहा होता। कुछ जाते हैं मौजदे देखने के लिए, जरी यूं समझे तमाशाई के तौर पर, जैसे जैसे कोई तमाशा देखने जाता है, चलो खुदा की दूरी में तो जाता ही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है। अब मौजे क्यों होते हैं? हमने सीखा था कि लोग ईमान लाए, अगर तो कोई मौजे देके ईमान ले आए, जिस तरह ताना गिल में यीशु मसीह ने जब पहला मौजा किया था, उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए, उनका भरोसा मेरे खुदावंद पर और बढ़ गया कि हमारा खुदावंद मुश्किल वक्त में हमारी बड़ी मदद कर सकता है और हमें वही कुछ मुहैया कर सकता है जो हमारी जरूरत होगी। अब ये तो उनकी बात मैं कर रहा हूं जो मौजा देखने जाते हैं। मुबारक है वो लोग जो मौजा देखते हैं और उसे सुपर ईमान लाते हैं, मैं उनका अप्रिशिएट करता हूं। नंबर दो, मैं बात कर रहा हूं कि वो लोग जिनकी जिंदगी में मौजा होता है, उनका हार्ट टेढ़ा था सीधा हो गया, पथरी थी निकल गई, आंख नहीं थी आंख आ गई, लगना था चलना शुरू हो गया, वगैरह वगैरह। खुदा सब कुछ करता है, सब कुछ खुदावंद करता है। अब वो लोग जिनकी जिंदगी में मौजा होता है, आगे उनकी भी दो किस्में होती है। जैसे मैंने कहा कि मौजा देखने वालों की भी दो किस्में हैं, एक है जो बस तमाशा के देखने जाते हैं और एक है जो ईमान ले आते हैं। दोनों मौजा देखते हैं, कुछ मौजा देकर वापस आ जाते हैं, कुछ देखकर ईमान ले आते हैं। जिनकी जिंदगी में मौजा होता है उनकी भी दो किस्में होती है। एक वो होता है जो वो बस अपना मौजा लेके घर आ जाता है, जैसे कि अक्सर खादिमों ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बनाया हुआ है, अपना अपना मौजा लो तो घर में जाओ, मौजा लेके घर नहीं जाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो मौजा लेके घर चले जाते हैं, बस खत्म, पहले ये था हमने ठीक हो गया, शायद दवाई भी देके आ जाते हैं। ये ना काफी है, बड़ा खतरनाक है। उसकी वजह सुनिए, जिस बंदे की जिंदगी में मौजा हुआ है या आज मेरा कलाम सुनने के बाद होगा या कई मौजा अपनी जिंदगी में हो चुके हैं, तो जेहन में रखिए, अगर आपने मौजा पाने के बाद अपनी जिंदगी में मौजे को देखने के बाद अगर आपने तौबा नहीं की तो आप डायरेक्ट बड़ी सजा के मुर्तकिब होंगे। कहां लिखा हुआ है? मत्ती की झील के 11वें बाब में। चलिए मेरे साथ, खुदा करे आपकी जिंदगी में मौजा हो। वैसे मैं यकीन करता हूं शायद ही चंद मसीही होंगे जिनकी जिंदगी में मौजा नहीं हुआ। तकरीबन हर बंदे की जिंदगी में वो खुदा ने मौजा किया हुआ है, वो आज से 20 साल पहले किया हो या 15 साल पहले किया हो। और मैं आपको खबरदार करने लगा हूं, अगर आपकी जिंदगी में मौजा किसी भी वक्त हुआ है और उसके बाद आपने तौबा नहीं की तो आप सुन लीजिए आपका अंजाम क्या होगा। पढ़िए सर, 11वां बाब निकाला आपने
जी,
20वीं से पढ़िए।
वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा,
शहरों को मलामत करने लगा मेरा खुदावन,
जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे।
अक्सर ही मौजज़े जाहिर हुए थे, अक्सर, एक नहीं पता नहीं कितने मौजज़े जाहिर हुए थे। हाँ जी,
क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी,
इसलिए वो मलामत के लायक थे क्योंकि तौबा ना की। आगे पढ़िए,
खराजीम तुझ पर अफसोस।
सबसे पहले मेरे खुदावन ने खराजीम को सामने रखकर उस पर अफसोस किया,
ए बैतसदा तुझ पर अफसोस,
ए सदा पर मेरे खुदावन ने अफसोस किया,
क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते।
आगे,
मगर मैं तुमसे कहता हूँ,
गौर से मेरी बात को सुना, गौर से मेरे खुदावन की बात को सुनिए, मगर मैं तुमसे कहता हूं जिन्होंने जिनकी जिंदगी में मौजा हुआ है और उन्होंने तौबा नहीं की, अंजाम सुनिए
कि अदालत के दिन,
अदालत के दिन
सूर और सैदा का हाल
हाँ
तुम्हारे हाथ से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा,
यानी तुम्हारा हाल उनसे भी ज्यादा बुरा होगा जिन्होंने तौबा नहीं की। और भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने मौजा किया है, अगर 20 साल पहले तौबा नहीं की तो आज कर लो।
आमीन आमीन।
डरो यादों को ना, खुदा ने मौजा किया ही नहीं है, और अगर किया है, जब भी किया है, भले बहुत देर हो चुकी है या चंद दिन पहले किया है या पिछले सालों में किया है, ओ भाई तौबा कर लो वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा खुदावंद कह रहा है। इसका मतलब है जब खुदा मौजा देता है तो खुदावंद तलब करता है कि तुम अपनी जिंदगी मुझे दे दो। इसे बड़ा अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर पर पाकिस्तान के इलाका के अंदर, अपना मौजा लो और घरों को जाओ, बस खत्म, गवाही दो, मौजा लो, गवाही दो, घरों को जाओ, गवाही नहीं दो। बेशक गवाही अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में यह किया है, आज मैं खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दूं।
आमीन आमीन।
आसमान पर खुशी हो जाएगी, मौजे का मकसद हल हो जाएगा। टेक इट वेरी सीरियस। आगे भी सर पढ़ते,
और ए कफरनहूम क्या तू आसमान तक बुलंद,
तीसरा शहर कफरनहूम है, खराजीम और बैतसदा के बाद। हाँ जी,
क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा, तू तो आलमे अरवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता।
आगे,
मगर मैं तुमसे कहता हूं,
अदालत के दिन, गौर से सुनना, अदालत के दिन, आगे
के अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक
होगा, तेरा हाल सदूमियों से भी ज्यादा बुरा है। कफरनहूमियों तुम्हारा हाल सदूमियों से भी ज्यादा बुरा होगा। वहां तो मौजे नहीं हुआ कोई, और कफरनहूम में तो लोग इतने मौजे किए हैं। सीखिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपकी जिंदगी में किसी वक्त भी मौजा हुआ है, उस वक्त अगर आपने तौबा नहीं की, अब कर लीजिए, अभी भी आपके पास वक्त है। मैंने कहा था तीन तरह की पार्टियां होती हैं, एक होते हैं जो मौजा देखने जाते हैं, उनमें से कुछ तमाशा ही होते हैं, कुछ ईमान ले आते हैं। फिर जिनकी जिंदगी में मौजा होता है उनकी भी दो पार्टियां होती हैं, एक है जो मौजा लेकर घर चले जाते हैं, और एक है जो तौबा कर लेते हैं। जो घर चले जाते हैं उनका हाल बड़ा बुरा होगा, लेकिन जो तौबा कर लेते हैं उनके सबब से आसमान पर खुशी
होगी।
और तीसरी पार्टी कौन सी है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, जिनके वसीला खुदा मौजा करता है, जिनके वसीला जिसके ऐसे हमने सीखा सीख रहे हैं मौजजात की कुदरत। हाँ, खुदा खादमों को ही कुदरत देता है ये। अब मुझे बताएं कि मैंने कहा था कि मौजजात क्या साबित करते हैं, खुदावंद के जो मौजज़ा है वो ये साबित करता है कि खुदावंद यहां पर इस खादम के साथ है। साथ होने का ये मतलब नहीं है कि जो कुछ खादम कह रहा है खुदावंद उस कहने हुए के साथ है, इसका मतलब है खुदावंद उसके साथ खड़ा है और खुदावंद काम कर रहा है, मौजज़े का काम खुदावंद कर रहा है।
आमीन।
कलाम खादम सुना रहा है लेकिन मौजज़ा खुदावंद कर रहा है। और बड़े अच्छे खादम है कुछ, वो अक्सर भी कहते रहते हैं अरे भाई मैंने नहीं मौजा किया, खुदावंद ने किया है। अरे अप्रिशिएट दैट, बहुत खूबसूरत बात है। अब ये जो बात हो रही थी ना झूठे नबियों की, जिनसे कहा जा सकता है खबरदार रहो, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये मौजजात जो है ये हमारी मलकियत है। वो समझते हैं कि शायद खुदा ने हमें ये मुख्तारी दे दी है और हम मौजजे कर रहे हैं। वो खादमो खुदा आपको आसमान पर ले जाए, इज्जत के साथ अपनी बादशाही में दाखिल करे। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपके वसीले खुदा कोई मौजज़ा करे, किसी बीमार को शफा दे, कोई बदरू निकल जाए, आप बिल्कुल सफाए, या कई मौजे हमने सीखे हैं, तो याद रखिए इसका यह मतलब ना समझ लेना आप बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है खुदावंद बड़ा अच्छा है। खुदावंद बड़ा अच्छा है। You are not good. God is good.
Yes. Amen. Amen.
खुदा मन बना है, आप भले नहीं, मुझसे आपकी जिंदगी की पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपके फल है। मुझसे खुदा की हजूरी का सबूत है।
Amen.
कि खुदावंद यहां मौजूद है और वो अपने बच्चों पर तरस खाकर उनको शिफा बख्शता है।
Amen. Yes, God.
क्योंकि कई दफा खादमों के अंदर बड़ी गलतियां होती हैं। अब यहां जो बात हो रही थी ना, ये सुन सी जो मत्ती की झील के सौंपे बाप की पदराय जो पड़ी गई है बातें कर रहा था, खुदावंद वहां पर उसे कहेगा, वो कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से मोशे नहीं दिखाए, हम वो यूं समझ रहे हैं कि शायद मोशों के साथ हमारा तल्लक है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें शक कोई नहीं, खुदा ही वसीला बनाता है, लेकिन आप मौजज़ों के मालिक ना बने, आपको या मुख्तार ना बनाए। मैंने जो कलाम में पढ़ा है, मैंने उस कलाम में आज तक तो मैंने यही पढ़ा है कि खुदावंद ने अपने खादमों को अपने भेदों का मुख्तार बनाया है, मौजज़ों का मुख्तार नहीं बनाया। मैंने नहीं पढ़ा कि खुदा ने किसी आदमी को मौजज़ों का मुख्तार बनाया, नहीं, मौजज़े मेरा खुदावंद ही करता है।
आमीन।
करता जरूर बंदे के वसीले से है। अब ये जो लोग अदालत के दिन बाएं हाथ पर खड़े होकर खुदावंद के साथ बहस करेंगे ना, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और हमने तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए, इसका मतलब है कि ये यही समझते रहे कि शायद खुदा ने हमें मौजज़ों की मुख्तारी दी हुई है। नहीं, कभी भी नहीं। मैं तमाम खादमों से हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि मैंने करना है मौजज़ा, आपने मौजज़ा नहीं करना, मेरी खुदावंद ने करना है।
आमीन।
उसी को जलाल दे, उसी को जलाल दे। अगर कोई मौजज़ा हो तो भी लोगों को बताएं, ओ भाई मैंने दुआ की है या मैंने हाथ रखे हैं, मौजज़ा खुदावंद ने किया है। दिस इज दी वे। आजकल बड़ा अजीब ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चला हुआ है, कुछ लोगों ने खादमों को हीलर कहना शुरू कर दिया है। अरे खादम नहीं हीलर होते भाई। कलाम ये लिखा शफा देने की तौफीक, हीलर मेरा खुदावंद ही है।
आमीन।
मंबा वो ही है, शफा का मंबा वो है, हीलर इज ओनली जीसस।
आमीन।
आजकल बड़ा अजीब ट्रेंड बना हुआ है, पूछते कौन आ रहा है, हीलर आ रहा है। कौन नहीं, हीलर नहीं आ रहा भाई, खुदा का खादम आ रहा है। खुदा उसके वसीले से उससे कोई भी खिदमत ले सकता है।
आमें, आमें।
क्योंकि वो खुदा का खादम है, खिदमत तरह तरह की है। मेरा खुदावंद कोई भी खिदमत उससे ले सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने सिस्टम को समझिए, तब्दील कीजिए। अब मौसा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जहां मौसा होते हैं हमारे अंदर यही बात होती है कि मौसा हुआ है लिहाजा ये खादम ठीक है, उसकी मनाती भी ठीक है, उसकी तालीम भी ठीक है, बल्कि इसका हुलिया भी ठीक है। और नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस बात को सीखने के लिए मेरे ख्याल में हम चलते हैं, थोड़ी सी गहरी बात है, गिनती की किताब के 20वें पाप में चलने मेरे साथ। बनी इसराइल कौम मुल्क कनान के करीब पहुंच गई है। मूसा, हारून, ये दोनों इनके बेहतरीन लीडर हैं। मिलकर सर विश्वम आप पढ़ी उसकी पहली आयत से।
और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दशरे सी में आ गई और वो कादिस में रहने लगे और मरियम ने वहां वफात पाई और वहीं दफन हुई और जमात के लोगों ने के लिए वहां पानी ना मिला।
पढ़ते जाइए।
तो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उस वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हजूर मरे। तुम खुदावन की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहां मरे, और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकालकर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहां तो पीने के लिए पानी तक मयसर नहीं। और मूसा हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर औंधे मुंह गिरे, तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ।
अब गौर से सुनना जरा, पानी नहीं मिला है, कादस में है ये और लोग इनसे झगड़ रहे हैं, ये खैमा इज्तिमा के आगे जाकर औंधे मुंह गिरे हैं, खुदा का जलाल जाहिर हुआ है और खुदा ने कलाम किया है। जी पढ़िए।
और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले,
उस लाठी को ले
जो तू और तेरा भाई हारून तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो।
पहले नंबर पर लाठी लो, दूसरे नंबर पर पूरी जमात को इकट्ठा करो
और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे।
उस बंदों को जमा करो, लोगों को जमा करो, लाठी हाथ में लो, वो जो सामने चट्टान है उनके सामने तुमने कहना है कि चट्टान अपना पानी दे, उनके सामने कहना है चट्टान अपना पानी दे। आगे,
और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना।
अच्छा,
यू जमात को और उनके चौपायों को पिलाना।
यही तरतीब, ये खुदा ने तरतीब दी है, मौजा करने की तरतीब खुदा ने दी है, इस तरीके से तूने ये काम करना है, ये भी मौजा है। आगे पढ़िए।
चुनाचे मूसा ने खुदा उनके हजूर से उसी हुक्म के मुताबिक वो लाठी दी और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया।
लाठी भी ले ली, जमात को भी इकट्ठा कर लिया उस चट्टान के सामने।
और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाले?
अशद इस तरह की बात को खुदा ने करने के लिए नहीं कहा था, खुदा ने तो चट्टान को कहने के लिए कहा था, ना कि इसराइल को कुछ कहने के लिए। एनी हाउ क्या हुआ?
तब मूसा ने अपना हाथ उठाया,
और मूसा ने अपना हाथ उठाया, खुदा ने यह नहीं कहा कि लाठी वाला हाथ उठाना है, लेकिन उसने हाथ उठाया
और उस चट्टान पर दो बार लाठी मारी
और नतीजा क्या निकला?
और कसरत से पानी बह निकला।
पानी नहीं बह निकला बल्कि कसरत से पानी बह निकला। आगे,
और जमात ने और उनके चौपायों ने पिया।
अच्छा, एक सुनिए, एक पढ़ जरा। अब गौर से सुनिए, आपने बातें कई दफा सीखी होगी, दोबारा सीख लीजिए, सुन लीजिए गौर से। मूसा के साथ जो कलाम हुआ है वो ये है, जमात को इकट्ठा कर लाठी ने चट्टान से कह दिया अपना पानी दे, और ये देगी पानी। लेकिन शायद उसने अपना पास्ट वाला एक्सपीरियंस दोहराया है, क्योंकि अगर खरूज की किताब का 17 बाब पढ़े तो मरीबा के जगह पर उस वक्त खुदा ने मूसा को कहा था कि तू लाठी ले और चट्टान पर लाठी को मार। तो वहां पर तो चट्टान को कहा था मार, तो वाकई उसने मारा और पानी बह निकला। अब यहां पर खुदा ने यह नहीं कहा कि तू चट्टान पर लाठी मार, लेकिन खुदा ने सादगी से कहा कि चट्टान को कह के ये अपना पानी दे। और जब मूसा ने लाठी मारी, अब हैरानों के पानी फिर भी बह निकला। हालांकि मूसा नाफरमानी कर रहा है, फिजिकली को वो नहीं कर रहा जो खुदा ने कहा है। मूसा को देखिए, उसके अमल को देखिए, तो वो खुदा के कलाम के खिलाफ है, लेकिन पानी फिर भी निकल आया, बल्कि कसरत से निकल आया। लोगों ने पिया, छुपाइयों ने भी पिया, शायद लोगों ने तालियां बजा दी हो, जबरदस्त, वाह वाह क्या बात है जनाब। हो सकता कहते मूसा की जय, हारून की जय, लेकिन खुदावंद की जय तो नहीं हुई। खुदावंद की जय इसमें है अगर खुदावंद का हुक्म माना जाए।
आमीन आमीन।
पानी बह निकला, लोगों ने पिया, लेकिन आप आगे पढ़कर हैरान होंगे खुदा ने क्या एक्शन लिया। पढ़िए सर।
पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे।
फौरी तौर पर इमीडिएटली खुदा ने उसका एक्शन लिया। इमीडिएटली लोग शायद पानी पी रहे हैं और खुदा मूसा को कह रहे तुमने मेरा यकीन क्यों नहीं किया, जब मैंने कहा था चट्टान से क्या ये अपना पानी देगी, तो तुमने कह रहा था उसने पानी दे दे रहा, तुमने लाठी क्यों मारी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मूसा का अमल ठीक है? नो। क्या मूसा ने वो कुछ किया जो खुदा कह रहा है? नो। मूसा को सजा मिल रही है? यस। हारून को सजा मिल रही है? यस। तो पानी क्यों निकले? पानी तो फिर भी निकल रहा है। क्या पानी निकल चट्टान से पानी निकला मौजा नहीं, सरियन मौजा है, मौजा तो है, लेकिन आपका क्या ख्याल है ये मौजा खुदा ने हारून और मूसा के अमल को देखकर किया है? नहीं, खादमों के अमल को देख के नहीं किया। खुदा बनी इसराइल पर तरस खाता है।
yes.
खुदा बताता है मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक खादम के वसीले खुदा कोई मौजा करे तो इसका यह मतलब ना समझना कि ये खादम ठीक है, इसका हुलिया ठीक है। हो सकता है खादम का हुलिया कलाम के मुताबिक ना हो, लेकिन मौजा फिर भी हो रहा हो। और भाई इसका यह मतलब नहीं है खादम ठीक है, इसकी शर्ट ठीक है, इसके लंबे बाल भी ठीक है, और नहीं हो भाई। इस वक्त बड़ा अजीब मामला बना हुआ है जहां मौजे होते हैं, जिस तरह का खादम होता है आप समझते हैं भैया खुदा से थोड़ी मौजे कर रहे हैं, ये खादम ठीक ही है तो मौजे हो रहे हैं। नहीं भाई, इस बात को जहन में रखिए कि जो मैं बात कर रहा हूं ना, 32:7-15 आयत वाली बात वो कर रहा हूं, मुझे झूठे नबियों की बाबत यीशु मसीह ने कहा है, उनका भी शायद यही ख्याल था कि मौजे हो रहे हैं तो लिहाजा इसका मतलब है हम ठीक है। आप ठीक नहीं है, आपके साथ तो खुदावंद कहता है मेरी तो तुमसे वक्त ही नहीं है, तुम तो इतने भी ठीक हो, तो फिर वो मौजे क्यों होते रहे? मौजे खुदा तुम्हें नहीं देख के करता रहा, खुदावंद अपने लोगों पर तरस खाता है।
आमीन आमीन।
खुदावंद तालिबों को बदला देता है।
यस।
आप क्या समझते हैं कि एक बीमार को चरपाई पर उठाकर ला रहे हैं तो खुदा खादम को देकर उसको शिफा देगा? ओ खुदा उसकी प्यास को देखकर शिफा देगा। खुदावंद का ईमान देखकर उनको शिफा देता है।
yes.
अब बताए मुझे, बात गहरी चली जाएगी, आपको पता कफरनहूम में जब एक घर के अंदर मेरा खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था, तो घर में अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं थी, और कलाम कहता है कि कुछ लोग एक मफलूज को लेकर आए और जगह ना पाई तो वो छत पर चढ़ गए, उन्होंने छत उधेड़ दी। तो आप मुझे बताएं कि उस मफलूज को जो शफा मिली है किसके सबब से मिली है? कलाम में लिखा है खुदा यसु मसीह ने उनका ईमान देखकर, जो उसको उठा कर लाए उनका ईमान देखकर कहा उठ अपनी चारपाई उठा चल फिर। मेरे ख्याल में द मैसेज इज वेरी क्लियर।
यस
खुदावंद लोगों को देखकर शफा देता है, खादम को देखकर नहीं। खादम के ठीक होने का अगर कोई सबूत है तो वो उसके फल है, नेमते नहीं। नेमते खादम की नहीं होती, नेमते रूह कुद्दस की होती है। रूह कुद्दस की नेमते हैं, आपको पता ही है कि आदमी की नेमते हैं, आदमी की नेमते नहीं, रूह कुद्दस की नेमते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे मत्ती 24 में हमने पढ़ा है ना कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और अगले क्या मुमकिन है कि बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। इसका मतलब मुमकिन नहीं है, बरगजीदा का गुमराह होना मुमकिन नहीं। आज बेचारे बरगजीदा नहीं, वो तो आराम से गुमराह हो जाएंगे। मैं तमाम बरगजीदा बहनों और बरगजीदा भाइयों से बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आप गुमराह ना हो जाए, खासतौर पर मौजजात के दौर के अंदर, यह मौजजात का दौर है, यह मौजजात का दौर है, इसमें दोषों की गुंजाइश नहीं, लेकिन हमें बहुत अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए मौजजात के बारे में। इसलिए खुदा ने मेरे दिल में यह मजमून डाला है कि हम मौजजात की गहरे तौर पर स्टडी करें और मौजजात करने वाले को ना देखो, कलाम के मुताबिक अपनी वर्ग जिंदगी को साबित करो। अगर आप अपनी बरकजिंदगी को साबित करेंगे, आप कभी इन झूठे नबी और झूठे मसीहों से ठोकर नहीं खाएंगे। मैं चाहता हूं आखिरी आयत पढ़ दीजिए, पर तो उसका दूसरा खाता है। हमें खुदा ने बरकजीदा कहा है, बरकजीदा नस्ल कहा है, शाही कायनों का फिरका कहा है, मुकद्दस कौम कहा है, पर तो उसका दूसरा खाता है, उसका पहला बाप है। पीछे बहुत सी बातें हैं, लेकिन की बात, मातम की बात, परहेजगारी की बात हो रही है, सबर दीनदारी की बात हो रही है। सर आठवीं से पढ़िए, क्योंकि अगर ये बातें
तुमने मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेपन ना होने देंगी।
आगे,
और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के दोए जाने को भूले बैठा है।
और आगे दसवीं पढ़िए,
बस ए भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो।
साबित करो कि आप बरगजीदा हैं। मैं अक्सर ही कहता रहता हूं अपनी शादियों में, ब्याहों में, खुशियों में, गमियों में, हर तरह के फंक्शंस में साबित करो कि आप बरगजीदा है। जहां के हम शक्ल ना बनाओ, यही वक्त होता है जब साबित करना होता है कि हम बरगजीदा हैं। अगर हम साबित करेंगे हम बरगजीदा तो फिर क्या होगा?
क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी
अपनी बरगजीदगी को साबित करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। इस दौर में मौजजात लोगों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं। वो मौजजात को देखकर समझते हैं जो कुछ ये खादम तालीम दे रहा है ये भी ठीक है, भाई मौजे हो रहे हैं यार, मौजे ऐसे ही हो रहे हैं तो क्या मतलब तालीम ठीक है। पर उसने क्या कहा है? अगर कोई आता है और वो नहीं बताता जो हम बता रहे हैं, किसी और यीशु की मनादी करता है, अरे खबरदार हो जाओ, सुनो सीखो। इस वक्त जो मनादी हो रही है वो रसूलों की हो रही है। जिस तरह रसूलों ने यीशु को पेश किया है उसी तरह खादम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये काफी गहरी बातें हैं। और यूहन्ना ने तो कमाल ही कर दी थी, उसने तो कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई आए और ये तालीम ना दे जो हम दे रहे हैं, जो रसूल दे रहे हैं, तो उसको घर में ही ना दाखिल हो रहे हो, वो तो कहते हैं सलाम भी ना करो। इतना सीरियस लिया जाता है रसूलों की तालीम को। ये खुदा का प्यारा रसूल यूहन्ना लिख रहा था अपने दूसरे खत में। मैं सारी बातों के साथ चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में मोइसा हुआ है किसी भी वक्त आई तौबा कर ले, किसी भी वक्त 20-25 साल पुरानी बात है तब भी तौबा कर ले। खुदा मुझसे अभी तक वेट कर रहा है आपका कि मैंने इसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोइसा कि इसने तौबा नहीं किया है। تو یاد رکھیے آپ کا حال بڑا برا ہوگا, اور جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیے جو بھیڑوں کے بیچ میں آتے ہیں, باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں, ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اس کلام کو اپنے دل میں لے لیں, اور یہ گمراہی کا دور اور ٹھوکروں کا دور ہے, یہ ٹھوکروں کا دور ہے, یہ گمراہی کا دور ہے, اس میں ہم اپنی آنکھیں کھولیں. خدا عزت جلال, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے خداوند ہمیں دنیا کے سامنے کھڑا کیا ہے تاکہ ہم دنیا کو خداوند پاک خدا تیرے کلام کی گہری باتیں خداوند پہنچا سکیں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے میرے خدا, جبکہ ہر طرف معجزات کی باتیں ہو رہی ہیں اور تو اپنے خادموں کے وسیلے معجزے بھی کر رہا ہے میرے خدا, لوگ اس معجزات کی گہرائی کو سمجھیں اور ایمان لائیں, اور جس جس کی زندگی میں معاشرہ ہو چکا ہے اگر معاشرہ ان کا توبہ کر رہا ہے تو میں یقین کرتا ہوں آج اس بات پر خوشی ہو رہی ہے. صرف معاوضہ نہ دیں, اور جن کے وسیلے تو معاوضہ کر رہا ہے وہ کبھی معجزات کی نعمت کو یا قدرت کو اپنی مختاری نہ سمجھے, مختار نہ سمجھے, بلکہ سمجھے کہ تو یہ تیری موجودگی کا ثبوت ہے. بادشاہ تجھے ہی جلال ملے میرے خدا, یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین. اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے.
اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرضدار کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں.
آمین. خدا مند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے, خدا مند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان ہی رہے, خدا مند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے.
آمین.